नमस्कार भारत, तारीख 2 फरवरी दिन शनिवार, अभिवादन स्वीकार कीजिए सिंधुवासिनी का। फिर आमने सामने आए रूस और अमेरिका, ट्रंप ने की INF संधि स्थगित।
One side has not been adhering to it. We have, but one side hasn't.
क्या अपने बजट की घोषणाओं को वोटों में बदल पाएगी मोदी सरकार?
सभी तो चुनावी लॉलीपॉप है, आपको क्या लग रहा है? जो रिबेट दिया है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को लुभाने के लिए ही तो दिया है।
अपने लिए सरकार के किए लुभावने वादों पर क्या कहते हैं देश के किसान?
ईमानदारी से बात करूं, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। इससे बेहतर किसान को भीख का कटोरा दे देना चाहिए, किसान को पंगू बनाया जा रहा है इस तरीके से।
होंगी खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार मोहम्मद शाहिद से सुनिए। परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जाने वाली इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स यानी INF संधि को अमेरिका ने स्थगित कर दिया है। अमेरिकी सरकार का यह फैसला आज से लागू हो जाएगा। शीत युद्ध काल की संधि में रूस और अमेरिका शामिल हैं। अमेरिका कहना है कि रूस अगर इस संधि का उल्लंघन बरकरार रखेगा तो वो इससे पूरी तरह बाहर हो जाएगा। वहीं रूस का कहना है कि अमेरिका के पास अपने आरोपों के कोई सबूत नहीं है। अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने वेनेजुएला में निकोलस मदुरो सरकार के तुरंत खात्मे का आह्वान किया है। मियामी में वेनेजुएला के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये समय बातचीत का नहीं बल्कि कार्रवाई का है। उन्होंने वेनेजुएला के स्वघोषित अंतरिम राष्ट्रपति ख्वान गाइदो को लेकर कहा कि अमरीका उनके साथ खड़ा है और अमरीका मानवीय सहायता में करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, आप इसको लेकर सुनिश्चित रह सकते हैं कि अमेरिका संवैधानिक सरकार की बहाली और स्वतंत्र एवं पारदर्शी चुनावों के लिए हमेशा वेनेजुएला के लोगों का समर्थन करता रहेगा। लेकिन अभी इसको लेकर साफ होना होगा कि ये वक्त बातचीत का नहीं है, ये वक्त कार्रवाई का है और अब वक्त मदुरो की तानाशाही के खत्म होने का है। अमेरिका सभी कूटनीतिक और आर्थिक दबावों का जोर लगाना जारी रखेगा ताकि लोकतंत्र में एक शांतिपूर्ण परिवर्तन हो। लेकिन ये सब देखने वाले पक्षों को ये जानना चाहिए कि मेज पर सभी विकल्प खुले हुए हैं। ये थे अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के शब्द। अफ्रीकी देश केप वर्दे ने कहा है कि उसने इतिहास में अवैध ड्रग्स का सबसे बड़ा जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने रूसी क्रू सदस्यों द्वारा ले जाए जा रहे कार्गो शिप को पकड़ा है जिसमें 7 टन कोकीन था। इस ड्रग्स की कीमत तकरीबन 35 करोड़ डॉलर आंकी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जहाज दक्षिण अफ्रीका से मोरक्को जा रहा था, लेकिन एक क्रू सदस्य की मौत के बाद इसे केप वर्दे में रुकना पड़ा। अफ्रीकी तट पर बसे इस द्वीप समूह देश की पुलिस को यूरोपीय तस्कर निरोधी प्रशासन ने खुफिया जानकारियां दी थीं। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति लॉरेंट बागबो की तुरंत रिहाई के आदेश दिए हैं। उनका देश अगर भविष्य के ICC के फैसलों में सहयोग करने को स्वीकार करता है तो ही उनको इस शर्त पर रिहा किया जाएगा। 2 सप्ताह पहले बागबो को मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में बरी कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने मांग की है कि उनकी अपील की मांग पर जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक उन्हें हिरासत में रखा जाए। बागबो पर 2010 में चुनावों के दौरान 3,000 लोगों की मौत से जुड़े आरोप हैं। वहीं बागबो के समर्थकों ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है।
Ce n'est pas normal dans le monde, on n'a pas vu ça. Hein? Quelqu'un qui a quitté.
ये साधारण नहीं है, मैंने पूरी दुनिया में ऐसा कोई मामला नहीं देखा जहां कोई शख्स बरी हो गया हो जिसने कोई अपराध नहीं किया है और उसको शर्तों पर आजादी दी जाए। ये किस तरह की असाधारण स्थिति है? क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? ये सामान्य नहीं है, किसी भी मामले में नहीं है, ना ही मेरे, ना ही ICC और ना ही कानून के लिहाज से। ये थे आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के एक समर्थक के शब्द। ब्रिटेन में 3 वर्षीय बच्ची की एक मां को उसका खतना करने का दोषी पाया है। महिला खतना को आपराधिक घोषित किए जाने के 30 साल बाद इस मामले में पहली बार किसी को सजा हुई है। युगांडा मूल की इस महिला को 2017 में तब गिरफ्तार किया गया था जब वो अपनी बेटी को घायल अवस्था में अस्पताल लाई थी। डॉक्टरों ने बच्ची के गुप्तांग पर काटे जाने के 3 निशान पाए थे। ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावेद ने इस फैसले का स्वागत किया है और महिला खतना को बाल उत्पीड़न का एक अपमानजनक रूप बताया है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिंधु वासिनी। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने वाली अहम संधि को अमेरिका ने स्थगित कर दिया है। रूस और अमेरिका के बीच हुई यह संधि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स यानी INF संधि के नाम से जानी जाती है। इसके तहत दोनों देश मध्यम दूरी की मिसाइलों का परीक्षण और तैनाती नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का आरोप है कि रूस इस संधि का पालन नहीं कर रहा है, जबकि रूस इस आरोप को बेबुनियाद बता रहा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए मोहम्मद शाहिद से।
काफी अरसे से रूस को धमकाते आ रहे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार कड़े तेवर दिखाते हुए इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स यानी INF संधि को स्थगित कर दिया है। शीत युद्ध के दौरान हुई परमाणु हथियार की ये संधि परमाणु निरस्त्रीकरण को एक बड़ा झटका है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये आरोप रहा है कि रूस INF संधि का कई बार उल्लंघन कर चुका है। ये संधि आज से स्थगित हो जाएगी और अगर ट्रंप प्रशासन ने आगे ये माना कि रूस इसका उल्लंघन जारी रखता है तो 6 महीने बाद वो संधि से बाहर निकल जाएगा। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि रूस ने वर्षों तक इस संधि का उल्लंघन करके अमरीका और यूरोप की सुरक्षा को संकट में डाला है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण था कि समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ता इस पर अंत तक बने रहते। उन्होंने कहा, एक पक्ष इसका पालन नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं लेकिन दूसरा पक्ष नहीं कर रहा है, तो जब तक वो इसका पालन नहीं करते हैं तो हम भी ये नहीं करेंगे। मुझे आशा है कि हम सभी को एक बड़े और सुंदर कमरे में लाने में सक्षम हैं और एक नई संधि करते हैं जो बेहतर होगी, क्योंकि निश्चित रूप से मैं वो देखना चाहूंगा, लेकिन हर किसी को इसका पालन करना होगा। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। वहीं रूस ने अमरीका के इस फैसले की निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका का ये रुख कानूनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का हनन है। रूस ने अमरीका के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि अमरीका के पास अपने आरोपों के लिए कोई सबूत नहीं था। उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, हम ये सुनते आए हैं कि रूस कथित तौर पर इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि रूस एक मंत्र की तरह ये दोहराता रहा है कि आप अपने ट्वीट के अलावा क्या कुछ किसी तरह का सबूत मुहैया करा पाएंगे कि ये कैसे हुआ, इसका उल्लंघन कब हुआ? एक सबूत का टुकड़ा तक नहीं है, सबूत के तौर पर एक सैटेलाइट तस्वीर तक नहीं है। ये थे रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा के शब्द। अमेरिका के समझौता स्थगित करने के फैसले का नाटो ने भी समर्थन किया है। 1987 में तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। INF एक ऐसा समूह है जो जमीन से मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती को रोकता है। इन मिसाइलों की रेंज 500 से 5,500 किलोमीटर तक होती है।
रूस और अमेरिका में एक बार फिर तनाव। रिपोर्ट सुना रहे थे मोहम्मद शाहिद। श्रोताओं, मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश कर चुकी है। इसमें अंतरिम बजट की परंपराओं को तोड़ते हुए कई बड़े और लोकलुभावने ऐलान किए गए। इस बजट के राजनीतिक पहलू क्या हैं और इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए सरकारी खजाने में पैसा कहां से आएगा? अंतरिम बजट में इतनी लोकलुभावनी घोषणाएं करना सही है भी या नहीं? बीबीसी संवाददाता संदीप सोनी ने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन से बात की और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश की।
काफी उम्मीदें थी कि जो कृषि क्षेत्र है उसके लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट होंगे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन कहा है कि 6,000 रुपया जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर जमीन या उससे कम हो उनको 3 किश्तों में देंगे प्रत्येक साल। तेलंगाना में जो मॉडल अपनाया है चंद्रशेखर राव जी ने, इसी का एक फॉर्म है आप कह सकते हैं। हालांकि उनका जो मॉडल है उसमें कई सारे और फीचर्स हैं। अब रही बात, अब डिफेंस एलोकेशन में कुछ बढ़ोतरी हुई है, काफी बढ़ोतरी हुई है। मिडिल क्लास जो छोटे तबके के सैलरी क्लास हैं उनके लिए भी कुछ राहत है, हालांकि वो रिबेट है, वो टैक्स स्लैब को कुछ नहीं किया, वैसा का वैसा है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके लिए पेंशन की बात की है। तीन चार तबकों को आइडेंटिफाई किया है और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनके लिए दिया है।
आपको लगता है कि जिस हिस्से को टारगेट करके बजट में ये घोषणाएं की गई हैं वो वोट में कन्वर्ट होंगी या राजनीतिक रूप से फायदा दिला पाएगी सरकार को?
जी, हम एक एक करके लेते हैं। जहां तक कृषि वर्ग का है, लोन वेवर का जो इफेक्ट होता है, जो इम्पैक्ट होता है, ये ऐसे स्कीमों से कई ज्यादा इफेक्टिव है। ये एक टारगेटेड स्कीम है और जो टारगेटेड स्कीम हमारे देश में या कहीं भी अपनाए जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। एक तो हमारे देश में लैंड रिकॉर्ड्स की हालत इतनी बुरी है कि बेचारा एक किसान को फिर बोलेंगे कि तुम प्रूव करो कि आपके पास 2 हेक्टेयर है या कम है। तो लैंड रिकॉर्ड्स पता नहीं कब के बने हुए हैं, उनके दादा परदादा के जमाने से, तो वो एक प्रॉब्लम होगा। और आखिर में आपको क्या मिल रहा है? 6,000 रुपया सालाना बहुत नहीं है। अगर आपको सामान खरीदना हो, यूरिया, फर्टिलाइजर, आपके जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, ये कई गुना ज्यादा है। 6,000 रुपया मुझे नहीं लगता है कि एक किसान को बहुत दूर ले जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी यही प्रॉब्लम है जो कृषि वाले सेक्टर का है। जो डेटा बेस है वो इतनी खराब है कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं मासिक जिनका इनकम 15,000 हो। भाई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज मेरा इनकम 15,000 हो सकता है, अगला महीना 10,000 हो सकता है, उसके बाद कुछ 5,000 हो सकता है, कभी 20,000 हो सकता है। ये कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। और इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में माइग्रेशन भी काफी ज्यादा होता है। आज मानो वो दिल्ली में 6 महीना रहेंगे और 6 महीने अपने गाँव में चले जाएंगे, वहां कुछ छोटा मोटा नौकरी कर लेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अच्छी तो है। इसकी जो नियत है सब साफ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी कठिनाइयां आएगी।
राधिका जी, आप सरकार की नियत नेक कह रही हैं, लेकिन ये बताइए कि इन लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास क्या इतना पैसा है, क्या इतना पैसा जुटा पाएगी सरकार?
कुछ एक्सपर्ट्स तो कैलकुलेट करने लगे हैं और उनकी ये राय है कि बहुत पैसा नहीं लगेगा। किस बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेट करके ये नतीजे पे पहुंचे हैं मुझे नहीं मालूम, बट हाँ, आपका कहना है कि पैसा कहां से आएगा।
किसानों की कर्ज माफी को आम बोलचाल की भाषा में चुनावी लॉलीपॉप कहा जाता है, और ये जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को 6,000 रुपए हर साल देने की घोषणा की गई है, क्या ये भी चुनावी लॉलीपॉप नहीं है?
सभी तो चुनावी लॉलीपॉप है। आपको क्या लग रहा है जो रिबेट दिया है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को लुभाने के लिए ही तो दिया है? और जो कहा है कि आपके पास दूसरा घर हो और उसको बेचते हैं तो उसमें से और 2 घर खरीदो तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ये एक घोषणा सभी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही किया है। ये एक तरह से मैं कहूंगी कि ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो की घोषणा हुई है। और जिस ढंग से जो एक्टिंग वित्त मंत्री है पीयूष गोयल, उनका भाषण और जिस ढंग से उन्होंने भाषण को समाप्त किया, वो बिल्कुल पूरी तरह मुझे एक इलेक्शन भाषण लगने लगा। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र का अनाउंसमेंट हुआ है।
आपको नहीं लगता कि अंतरिम बजट के हिसाब से कुछ ज्यादा घोषणाएं नहीं कर गई है सरकार?
ये तो मुझे बिल्कुल फुल फ्लेज्ड बजट लगा। हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये बात भी क्लैरिफिकेशन करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं है कि एक सरकार खाली 5 ही बजट पेश करेगी, लेकिन एक कन्वेंशन होता है, एक प्रैक्टिस होती है, एक नॉर्म होता है। ये बीजेपी ने ऑब्वियसली किसी का परवाह नहीं किया और अपने तरीके से एक पूरी फुल फ्लेज्ड बजट पेश किया है। बल्कि ये जो किसान वाला घोषणा किया है, उन्होंने कहा है कि वो दिसंबर से लागू होगा और 3 महीने का या जो है जो भी है वो किस्त मिल जाएगा। तो हम बिल्कुल सवाल तो उठा सकते हैं इस पे, लेकिन ये इलीगल भी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, ये पूरी तरह राजनीतिक है, एक राजनीति स्ट्रैटेजी के रूप में।
बजट का विश्लेषण कर रही थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन, उनसे बात की हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसानों की, जिनके लिए अंतरिम बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने की बात कही है, लेकिन किसानों के लिए ये कितना महत्व रखता है? इस बारे में उनकी राय जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ किसानों से बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
मेरा नाम पंकज सिंह परिहार है। मैं महोबा जिले के गुगौरा गांव का रहने वाला हूं। मैं स्वयं एक किसान हूं और करीब 1.5 हेक्टेयर से ऊपर की जमीन का मैं मालिक हूं। 6,000 रुपए तो सरकार देती है, लेकिन अगर यूरिया का मूल्य बढ़ा देगी और डीजल का मूल्य बढ़ा देगी तो फिर उस 6,000 से क्या होगा। जैसे अब हमारे यहाँ मान के चलिए DAP और यूरिया के बिना गेहूं और सरसों, मतलब दलहनी तिलहनी गेहूं, कोई भी फसल नहीं होती है। अब 2-3 साल पहले यूरिया और DAP के रेट लगातार घटते बढ़ते आए हैं। आज DAP 1450 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। 2 साल पहले वो हमें 500 में ही मिल जाती थी, तो अब DAP की रेट अगर दुगने हो गए और 1 हेक्टेयर में कम 4 बोरी यानी कि 200 किलो DAP लगना है, तो 2 गुना उसका बढ़ गया। तो अब ऐसे ही डीजल का बढ़ गया, क्या होगा 6,000 रुपए से। मुझे तो नहीं लगता है कोई फायदा होगा 6,000 रुपए से।
मेरा नाम रामस्वरूप किसान, ग्राम पोस्ट परली का, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। ये कोई सहायता नहीं है, ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ये तो एक ढीक है। एक तरफ कर्मचारियों को कितना ज्यादा दिया जा रहा है, एक तरफ खुद सियासतदार जो है वो अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, एक किसान को जो कितनी मेहनत करता है, शर्म की बात है। ये 6,000 रुपए यानी चुनाव जीतने के लिए ये जो फेंक रहे हैं, ये सारी भी है साहब। ये 2 हेक्टेयर जमीन का मतलब हो गया हमारे 8 बीघा। 8 बीघा जमीन में 6,000 का खाद बीज पूरा नहीं आ सकता। मैं बताऊं, 1 बीघे का अगर खर्चा आप करेंगे तो 1 बीघे के अंदर कम से कम 2,500 रुपए खर्चा आ जाएगा 1 बीघे के अंदर। उसमें सारी मेहनत अगर खाद बीज और सारी मेहनत अगर करें तो 1 बीघा जो है वो 4,000 रुपए खा जाएगा।
मैं भारत सिंह राठौर बोल रहा हूँ, जावरा मध्य प्रदेश से। भारतीय जनता पार्टी के किसान विंग में भी काम करता हूँ मैं, वहाँ उसका कार्यकर्ता भी हूँ। ईमानदारी से बात कहूँ, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। इससे बेहतर किसान को भीख का कटोरा दे देना चाहिए। किसान को पंगू बनाया जा रहा है इस तरीके से। किसानों को ये चाहिए कि उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए। कोई कर्ज माफी नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें कोई भीख चाहिए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें आप हमारी फसल का जो उचित मूल्य है दे दो। आप हमें आपसे कोई रियायत नहीं चाहिए। 2 हेक्टेयर 8 बीघा जमीन है, 8 बीघा जमीन बनती है सर, और उसमें 8 बीघा जमीन में यदि कोई भी 2 फसल लेता है किसान हमारे क्षेत्र में मूलतः, और ज्यादा अधिकांश 2 ही फसलें होती है, एक रबी और एक खरीफ की होती है। उसमें लागत के हिसाब से यदि हमें देखें तो 5,000-6,000 रुपए प्रति तो उसका बीघे का खर्च आ जाता है, 12,000 प्रति हेक्टेयर हो जाता है, तो 1,248,000 रुपए उसको लागत हो जाता है। और आप 6,000 रुपए देंगे उसको क्या मिलेगा। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इससे मोदी जी या हमारे प्रधानमंत्री लालीपाप पकड़ा रहे हैं। किसान समझता है, आज का किसान समझदार हो गया, पहले वाला किसान नहीं रहा, अब पढ़ा लिखा किसान हो गया। आप कितना ही उसको लालीपाप दे दो, लालीपाप के झरसे में आने वाला नहीं है।
मेरा नाम शब्बीर अहमद डार, नूराबाद J&K से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ ये एक पॉलिटिकल ट्रेंड है, क्योंकि जब मोदी साहब ने इलेक्शन लड़ा तो उसने किसानों की दुहाई देकर उस वक्त कह रहे थे महंगाई है, किसानों के लिए वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन बजट के तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक आफ्ताब को चराग दिखाने के बराबर है, सिर्फ एक दिल लुभाने वाली बात और कुछ भी नहीं है। क्या होता है 6,000 रुपए से क्या होगा। मोदी साहब ये देख ले कि उसका जो अपना पहनने वाला सूट है वो कितने करोड़ों में बिक गया। क्या एक किसान की कीमत सिर्फ 6,000 रुपए है।
मैं सरवन सिंह पंदेर किसान बोल रहा हूँ पंजाब से। ये तो 54 स्टंट्स है 6,000 रुपया, वो भी 3 किस्तों में, तो ये तो कुछ भी नहीं है, एक लॉलीपॉप है। इससे किसानी का कुछ भला होने वाला नहीं है। खेती के ऊपर तो लागत इतनी आ रही है, अभी उसका अभी तक हमें असल भाव नहीं मिला। अब गन्ने पर कुछ नहीं बोले मोदी, ठीक है। आज हम जाप से बात कर रहे हैं तो हम गन्ना मिल पर धरना लगा रहे हैं इस वक्त। किसानों को अभी तक गन्ने के बकाए नहीं मिल रहे।
बजट के मुद्दे पर किसानों से बात की BBC संवाददाता संदीप सोनी ने।
BBC इंडिया बोल।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं की, लेकिन क्या मोदी सरकार का आखिरी बजट उनकी चुनावी नैया को पार लगा पाएगा, यही है इस बार BBC इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 2 फरवरी शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो इंडिया बोल में हिस्सा लेना मत भूलिएगा। और अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां जानने का। स्टूडियो में अखबारों के साथ मौजूद है मोहम्मद शाहिद, बताइए।
जी सिंधु वासनी, जिस तरीके से कल बजट पेश हुआ तो जाहिर सी बात है हर अखबार में बजट बजट और बजट ही होगा
जी।
तो वही है सारे अखबारों में देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडिंग है इंटरिम बजट फाइनल पिच। अमर उजाला लिखता है सियासी स्ट्राइक चुनाव से पहले याद आया मध्य वर्ग। और बहुत क्रिएटिव है, रचनात्मकता बहुत दिखाई है अखबारों ने सिंधु वासनी, हर बहुत तमाम तरीके से। जैसे हिंदुस्तान ने जो है हैशटैग किसान, हैशटैग नौकरी पेशा, हैशटैग मजदूर, और फिर लिखा है बहुमत पर नजर,
यानी सबको साधने की कोशिश।
बिल्कुल, उन्होंने इस तरीके से हैशटैग बनाया। और दूसरा सबसे एक कई अखबारों ने इस्तेमाल किया है, अभी हाल फिलहाल में उरी फिल्म आई है और उरी फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है उसके कलाकारों को ऑपरेशन के दौरान, उसमें कई अखबारों ने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसी सेना की वर्दी में दिखा रखा है। अमर उजाला ने भी इसी तरीके से दिखाया हुआ है, नवभारत टाइम्स भी इसी तरीके से दिखा रहा है, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बंदूक लिए लिखा हुआ है ऑपरेशन कमल।
और हाउस द जोश का भी ये काफी अखबारों ने इस्तेमाल किया है।
बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई जो है हाउस द जोश कह रहा है, अमर उजाला भी कह रहा है। इसके अलावा पंजाब केसरी ने जो है वो वित्त मंत्री, जो कार्यकारी वित्त मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनको हनुमान दिखा दिया है। और उन्होंने हेडिंग लगाई है बलशाली सरकार हर वर्ग को उभार।
तो संकट मोचन हनुमान
जी। तो अब बढ़ते हैं बजट से दूसरी ओर चलते हैं, जो आजकल का सबसे एक अहम मुद्दा भी बना हुआ है जो है अयोध्या। दैनिक भास्कर बजट की खबरों के बाद अगला पेज पलटे तो आता है धर्म संसद में धर्म संकट। मतलब जो धर्म संसद हुई थी वहां भागवत भी पहुंचे थे। भागवत ने कहा मंदिर निर्माण के लिए 4-6 महीने सब्र रखें। आप जानती हैं साधुओं ने तारीख भी दे दी है
जी, अल्टीमेटम दे दिया,
फरवरी में कह रहे हैं कि हम लोग कूच करेंगे। तो साधु संत बोले धर्म संसद में सियासी बयान देना बंद कीजिए। इसी से जुड़े जनसत्ता पे हेडिंग है मंदिर मुद्दा अब निर्णायक दौर में, मोहन भागवत कहते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि सीबीआई का नया डायरेक्टर चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई दूसरी बैठक में भी कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। सिंधु
जी बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां के गवादर शहर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के तहत सेना की 24 घंटे निगरानी में एक हाईवे बन रहा है। इस हाईवे के निर्माण की वजह से गवादर के सैकड़ों मछुआरों का उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें तमाम तरह की तकलीफें भी झेलनी पड़ रही है, उनकी रोजी रोटी छिन रही है। सो अलग तटीय शहर गवादर से हालात का जायजा दे रही हैं बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी।
गवादर का समंदर नाखुदा अल्लाह बख्श की माँ जैसा है, उनकी जिंदगी और रोजगार इसी से है। गवादर की 70% आबादी की तरह अल्लाह बख्श मछलियाँ पकड़कर रोजी चलाते हैं, लेकिन इन दिनों उनका काम ठीक नहीं चल रहा।
मसला बहुत है भी है यहाँ पे, उस साइड में सड़क कार है, वहाँ पे सहूलतें कम है, और हम लोग रात को जाते हैं, रात को ये बोलते पोर्ट के पास नहीं जाओ, एम्बेसी वाले हम लोग पकड़ते हैं मच्छी तो रात को है, गालियाँ भी देते हैं कुछ लोगों को, मारते हैं भी हम लोगों को। अभी इस साइड में है, इस साइड में तो मछली नहीं है।
अल्लाह बख्श समेत यहाँ के सैकड़ों मछेरों को समंदर के उस हिस्से में जाने से रोक दिया गया है जहाँ ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं, और ऐसा हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के तहत बन रहे एक हाईवे की वजह से।
तेरे को पोर्ट को बनाना है तो बनाओ, या सीपैक बनाओ तो बनाओ, हमको इतराज नहीं है, हम लोगों को सहूलत दियो नहीं। वो साइड में एम्बेस वाले, ये नेवी वाले पकड़ते भी जाओ इधर मुर्गा बनो। अरे किस लिए मुर्गा बनो, पेट के लिए मच्छी पकड़ने यहाँ आते हैं, मुर्गा बने हम क्यों? हम लोग को ऐसे बूदी बनाने के लिए तुम लोगों को कहा के देगा, अभी तक नहीं दिया, कल ही अपना सड़क बना रहे हैं।
19 किलोमीटर लंबे ईस्ट बे एक्सप्रेसवे को 24 घंटे सेना की सुरक्षा में बनाया जा रहा है। ये सड़क गवादर डीप सी पोर्ट को सड़कों के उस जाल से जोड़ेगी जो इस शहर से शुरू होने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन के इलाके काशगर से मिला देगा। सड़क की कंस्ट्रक्शन साइट पर तस्वीर लेने और फिल्म बनाने की इजाज़त नहीं है। स्थानीय मछेरों को इस एक्सप्रेसवे के डिज़ाइन पर आपत्ति है।
हमारी बीच बिल्कुल ख़त्म हो रही है, जहाँ पर हम कश्तियों की चर्बी नहीं कर सकते, कश्तियों को निकाल नहीं सकते, उनकी मरम्मत नहीं कर सकते और आसानी से समंदर के अंदर आ जा नहीं सकते।
मोहम्मद यूनस स्थानीय मछेरा समुदाय के नेता हैं। वो कहते हैं कि एक्सप्रेसवे में 12 फुट चौड़ी 3 सुरंगें बनाने की योजना है जिसके जरिए मछेरे समंदर तक पहुँच सकेंगे। मछेरों को ये मंजूर नहीं।
ये इलाका असल में 4.5 किलोमीटर माईगिरी का इलाका है, اس میں ماہی گیر مویلے شامل ہیں اور اس سمندر میں یہ سب سے زرخیز سمندر ہمارا ہے اور اس میں سال کے 12 مہینے ہی ماہی گیری کی جاتی ہے، جبکہ دوسری سائیڈ میں یا دوسرے علاقوں میں سال کے 10 مہینے ہی ہو جاتے ہیں سمندر میں کشتی پر۔
یونس کہتے ہیں کہ مچھیروں کا مطالبہ ہے کہ سرنگیں 200 فٹ چوڑی ہوں۔
اگر یہ روڈ اسی طرح بن گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورے سمندر سے بے دخل ہو جائیں گے اور ہماری جو گسر بسر ہے، روزی روٹی ہے، یہ مکمل ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم 40 سال سے لے کے 60 سال کے جو عمر کے لوگ ہیں وہ سمندر سے ہی روزی کماتے ہیں۔ اگر ہماری مطالبات منظور نہیں ہوئے تو ہم پریشانی میں بھوک اور اپلاس کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے ہم روڈوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔
ستھانی آبادی کا ایک بڑا حصہ اپنی زندگی چلانے کے لیے مچھلیوں پر نربھار ہے۔ عبدالستار سمندر کے ساحل پر لکڑی کی ایک بڑی سی ناؤ بنانے میں مصروف ہیں۔ ان کے آس پاس درجنوں مزدور کشتیوں کے مختلف حصوں پر کام کر رہے ہیں۔ عبدالستار کہتے ہیں کہ کشتی بنانے والے مزدوروں کے حالات بھی مچھیروں سے اچھوتے نہیں۔
سر، یہ جو سڑک بن رہی ہے سی پیک کا، ان لوگوں کو یہ ماہی گیروں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ سمندر میں جانے نہیں دیتے، مچھیروں کو پریشانی ہو جاتا ہے، روزی روٹی چھین لیتے ہیں لوگوں کا۔ ماہی گیروں کے وجہ سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، یہ سب کشتیاں بن رہی ہیں جو ہم لوگ بنا رہے ہیں، اسی وجہ سے پھر ہم لوگوں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، کام بند ہو جاتا ہے ہم لوگوں کا۔
حالانکہ پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ وہ ستھانیہ مچھیروں کو زیادہ سے زیادہ سویدھائیں دینا چاہتے ہیں اور اس لیے انہوں نے تیاری اس بات کی بھی کی ہے کہ مچھیروں پر ایسٹ بے ایکسپریس وے کے نرمان کا وپریت اثر نہ پڑے، لیکن مچھیرے اس دعوے کو خارج کرتے ہیں۔ اس مدعے کو لے کر گوادر میں ابھی بھی تناؤ ہے۔ شمالہ جعفری، بی بی سی نیوز، گوادر، پاکستان۔
اور اب وقت ہے کھیل سماچاروں کا۔
نمسکار، کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں راکھی شرما۔ بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم کی ون ڈے کپتان متالی راج نے اپنے کریئر میں ایک خاص اپلبدھی حاصل کر لی ہے۔ متالی 200 ون ڈے کھیلنے والی وشو کی پہلی مہیلا کرکٹر بن گئی ہیں۔ انہوں نے کل نیوزی لینڈ کے خلاف ہیملٹن میں یہ کامیابی حاصل کی۔ حالانکہ اس میچ میں بھارت کو 8 وکٹ سے ہار جھیلنی پڑی۔ متالی نے ون ڈے میں جون 1999 میں آئرلینڈ کے خلاف اپنا ڈیبیو کیا تھا، تب انہوں نے ناباد 114 رن کی پاری کھیلی تھی اور بھارت یہ مقابلہ 161 رن سے جیتا تھا۔ وہ ون ڈے میں سب سے زیادہ رن بنانے والی مہیلا کرکٹر بھی ہیں۔ ان کے نام اب تک 6,622 رن ہیں۔ اور وہیں بھارتی پروش ٹیم کل 5ویں اور آخری ون ڈے میں نیوزی لینڈ کا سامنا کرے گی۔ سیریز اپنے نام کر چکی بھارتی ٹیم کی بلے بازی 4تھے ون ڈے میں بری طرح فلاپ رہی تھی، جس کے کارن اسے میچ میں 8 وکٹ سے کراری ہار جھیلنی پڑی۔ اس سیریز میں کیوی ٹیم کے پردرشن پر بات کر رہے ہیں کھیل پترکار وجے لوک پلی۔
کافی ٹائم بعد ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ جو ہے گھر پہ بھی جو ہے ہمیشہ کہاں جاتا ہے، بہت اسٹرانگ ٹیم ہے، بہت اسٹرانگ ٹیم ہے، پر اس سیریز میں بھارت نے اچھا کھیل کے ان کو تو گھر پہ ہرایا ہے۔ ان کا منوبل ڈیفینیٹلی اوپر ہوگا، یہ فیکٹ ہے کہ وراٹ کوہلی تو واپس ہی آ گئے ہیں اور دھونی اکیلے، وہ ہیم سٹرنگ کتنا چانس لیں گے، اگر ان کی ہیم سٹرنگ کا ایشو ہے تو ان کو چانس نہیں لینا چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اگلے میچ میں ایسا کولیپس تو نہیں ہوگا بھارت کا۔
اور اب بات ٹینس کی، جہاں ڈیوس کپ کوالیفائر کے کل پہلے دن بھارت کا پردرشن اٹلی کے خلاف نراشا جنک رہا۔ سنگلز کے اس کے دونوں کھلاڑی رام کمار رامناتھن اور برجنیش گننیشورن دونوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ رام کمار جہاں آندرے سیپی سے 6-4, 6-2 سے ہارے، وہیں برجنیش کو میتیا بیرجینی نے 6-4, 6-3 سے ہرایا۔ آج دونوں ٹیمیں ڈبلز اور ریزرو سنگلز مقابلے کھیلیں گی۔ ڈبلز میں بھارت کی چنوتی روہن بوپنا اور دیوج شرن پیش کریں گے۔ کھیل سماچاروں میں فی الحال اتنا ہی۔
چلتے چلتے مکھیہ سماچار ایک بار پھر سن لیتے ہیں محمد شاہد سے۔
بی بی سی سماچار۔ پرمانو نرستیکرن کی دشا میں مہتوپورن مانے جانے والی انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورس یعنی آئی این ایف سندھی کو امریکہ نے استھگت کر دیا ہے۔ امریکی سرکار کا یہ فیصلہ آج سے لاگو ہو جائے گا۔ شیت یدھ کال کی سندھی میں روس اور امریکہ شامل ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس اگر اس سندھی کا الگھن برقرار رکھے گا تو وہ اس سے پوری طرح باہر ہو جائے گا۔ امریکی اپراشٹرپتی مائک پینس نے وینیزویلا میں نکولس مدورو سرکار کے ترنت خاتمے کا آہوان کیا ہے۔ میامی میں وینیزویلا کے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سمے بات چیت کا نہیں بلکہ کاروائی کا ہے۔ افریقی دیش کیپ وردے نے کہا ہے کہ اس نے اتہاس میں اویدھ ڈرگس کا سب سے بڑا ذخیرہ ضبط کیا ہے۔ پولیس نے روسی کرو سدسیوں دوارا لے جائے جا رہے کارگو شپ کو پکڑا ہے جس میں 7 ٹن کوکین تھا۔ بی بی سی سماچار۔
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलकराज भाटिया ने। अब आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट। अभी के लिए सिंधुवासिनी को सभी साथियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।